بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم گزشتہ جو ہمارا کہ اس موضوع پر پہلا ہمارا ہماری جو ہے گفتگو تھی اس میں ہم نے انتظار اور اس کی پانچ انتظار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور کہا کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے پانچ سیشن ہوں گے. پہلا سیشن ہو چکا جس کے اوپر ہم نے جو ہے انتظار کے معنی قسمیں اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا. آج جو کہ ہمارا دوسرا سیشن ہے یہ سیشن بھی اسی سیشن سے ریلیٹڈ ہے اور اس سیشن میں ہم کچھ ایسی اسی کے آگے جو کنٹینیو موضوع ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ انتظار صادق یا سچا اور حقیقی انتظار کیا ہے, اس موضوع کو لے کر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اس کی کیا خد و خال اور شکل و صورتیں بن سکتی ہیں. تو ایک سچا منتظر یا ایک سچا انتظار یا ایک صادق اور حقیقی انتظار کہہ سکتے ہیں کہ تین بنیادی پلرز پر قائم رہ سکتا ہے یا قائم ہو سکتا ہے, اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. یعنی تین بنیادی جو ہے فیکٹر اس میں ہونے چاہیے, تین بنیادی چیزیں ہونی چاہیے. پہلی بنیادی چیز, کیونکہ روایات کو جس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کیٹگرائز کرتے ہیں تو اس سے یہی چیزیں سامنے آتی ہیں. بیک پہ روایات ہیں, ظاہر ہے کہ ہم وقت کو زیادہ جو ہے منیمم وقت پہ میکسیمم میٹر دینے کے لیے ہم ساری روایات کوڈ نہیں کرتے ہیں, انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے بھی. تو اس میں جو چیز ہمیں سامنے آتی ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ جو ایک منتظر کبھی بھی جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے, موجودہ صورتحال اس کے سامنے ہے, جو عصر غیبت میں, اس سے وہ راضی نہیں ہو رہتا, خوش نہیں رہتا, دنیا کے موجودہ حالات پر بالکل بھی خوش نہیں ہوتا, کیونکہ یہ حالات اس کے لیے مناسب نہیں ہے, سوٹ نہیں کرتے یہ حالات ان کے لیے, کیونکہ اس میں اس کے ممکن ہے کہ فزیکلی اور جسمانی طور پر اس کے لیے بہت کچھ موجود ہے, اس دنیا کے اندر بڑی چمک دمک ہے, بہت کچھ ہے, لیکن اس کی سپرٹ اور روح کے لیے, اس کی سوچ اور فکر اور ایمان کے لیے مناسب اور سوٹیبل نہیں ہے یہ حالات, لہٰذا وہ خوش نہیں ہے. بہت کچھ اس کے پاس فیسلٹیز ہیں, بڑی اچھی لائف ہے مادی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, لیکن کیونکہ ایمان کی غیر موجودگی اور وہ عادلانہ الہی ولائی نظام نہیں ہے, سسٹم کے اندر وہ نہیں ہے, تو لہٰذا وہ خوش بھی نہیں ہے. کہہ رہا ہے مجھے بالکل خوشی نہیں ہو رہی, میری اخلاقیات, میری معنویات اور ان چیزوں کو لے کر میں بالکل خوش نہیں ہوں, میرے ایمان کا نظام نہیں ہے, میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں, لیکن مجبوری ہے, میں چل رہا ہوں اسی طرح. لہٰذا کیونکہ موجودہ جو ہمارے سسٹمز ہیں انفارچونیٹلی ابھی تک دنیا میں 99.9% جو نظام ہے وہ انسان کی مادی جسمانی ضروریات کو فوکس کر کے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسی کے اوپر سارا کچھ کر رہا ہے, اس کے لیے رائٹس اور حقوق بھی لکھتا ہے اور انٹرنیشنلی اور عالمی سطح پر اس کو ایک کامن اور مشترکہ ایک ڈاکیومنٹ کے طور پر سب لوگ ایگری کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے جسمانی حقوق یہ ہیں شہری کے عنوان سے, فلان کے عنوان سے. لیکن ان حقوق میں یا اس ڈاکیومنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس طرح کے کام کیے گئے ہیں اس میں انسان کی کرامت, شرافت, اس کا اشرف مخلوق ہونا, اس کی روحانیت اور معنویت, اخلاقیات, اس کی عبودیت اور بندہ ہونا اللہ کا, اس حقوق کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا ہے. اس حقوق کو اچھے طریقے سے بالکل اس نظام کے اندر موجود ہی نہیں ہے. مثلا ایک اگزامپل یہ ہے کہ میں اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے پر میرا ایک حق ہے کہ میں ایک ایسی انوائرمنٹ اور ماحول میں جیوں کہ جس میں میں اللہ کا بہتر بندہ بن سکوں اور میری روحانیت اور معنویت تباہ نہ ہو جائے, لیکن ہم دیکھتے ہیں موجودہ دنیا کے سسٹموں میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. میرا بنیادی حق یہ بھی ہے کہ میں حیا, عفت, پاک دامنی, غیرت, انصاف, عدالت کے ساتھ زندگی گزاروں. میرے اس حقوق کی کوئی رعایت یہاں پر نظر نہیں آتی, لیکن باقی حوالوں سے بہت زیادہ ہے. تو بس پہلا جو چیز تھا وہ یہ کہ وہ کسی بھی کرنٹ سچویشن کو جب تک اس آئیڈیل نظام سے ریلیٹڈ اور متصل کوئی نظام نہیں بنتا وہ خوش نہیں ہے, چاہے اس کی زندگی کتنی بھی آرام دہ ہو, آسائش ہو, لیکن یہ امام کہ نظام کی دی ہوئی سسٹم کے تحت جو ہے وہ زندگی تو نہیں گزار رہا ہے. दूसरा जो इसके अंदर से पिलर जो कह सकते हैं कि वो निकलता है, मतलूबा सूरत हाल के यानी हुसूल के लिए उम्मीद रखता है, लेकिन वो ये सोचता है एट द सेम टाइम, ठीक है अभी सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है और यकीन है, भरोसा है कि ये जो है सूरत हाल बदलेगी, और बदलने के लिए जाहिर कोशिश भी करनी है, क्योंकि एक इंसानी आला और अच्छी तरबियत का जो माहौल है वो जो है आएगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। मौजूदा सूरत हाल से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, जब तक ये सूरत हाल तब्दील नहीं होती, मौजूदा जो सिस्टम है, ये सिस्टम दुनिया का जो निज़ाम है, ये निज़ाम मुझे कोई सुनहरा मुस्तकबिल, रूहानी मानवी मुस्तकबिल, एक अल्लाह का बंदा बनने वाला मुस्तकबिल जो है नहीं मैं कर सकता है सिस्टम के अंदर से। मुझे ये उम्मीद है, मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि जहाँ दुनिया में यानी इस दुनिया में एक ऐसा समाज और सोसाइटी और निज़ाम और सिस्टम वजूद में आएगा कि इंसान वाकयान अपनी सआदत को पहुंचेगा, हर लिहाज से सआदत और खुशहाल जिंदगी होगी। ये खुशहाली सिर्फ उसकी रोटी कपड़ा और मकान तक नहीं होगी, ये खुशहाली खाने पीने और रहने सहने तक नहीं होगी, उसके ईमान के लिए खुशहाल जिंदगी होगी, उसके करामत शराफत इज्जत के लिए, मानवियात रूहानियात के लिए, वाकई वो एहसास करेगा कि मैं अल्लाह का एक अच्छा बंदा बना हुआ हूँ। एक आइडियल सोसाइटी की तश्कील की आरजू रखना, उम्मीद रखना, नाउम्मीद न होना, मायूसी का शिकार न होना कि सूरत हाल बदलेगी और उसके लिए कोशिश करना, ये दूसरा पहचान और पिलर है एक सच्चे और हकीकी इंतजार और मुंतजिर के। तीसरा जो पिलर है इसके अंदर है कि इशारा भी कर दिया दूसरे के अंदर कि सूरत हाल को बदलने की कोशिश करना, यानी कि वो एक झूठी उम्मीद रखा हुआ है। झूठी उम्मीद तब होती है कि जब आदमी उस उम्मीद के हिसाब से काम नहीं करता है, उसके ऊपर जो है कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी, बस एक खाली खोखली उम्मीद रखी हुई है, ऐसे ही दिल को बहलाने में गालिब यह ख्याल अच्छा है, नहीं इस तरह की उम्मीद नहीं है, एक सच्ची उम्मीद है, उस उम्मीद के लिए जद्दोजहद करता है, वो कोशिश करता है। सूरत हाल बदलनी है तो काम करना है, बगैर सूरत हाल बगैर काम किए सूरत हाल नहीं बदल सकती, हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना, बल्कि उठकर हमेशा उस तब्दीली के लिए, उस बेहतरी के लिए, उस अच्छाई के लिए कोशिश करना है। कहा जो है ये कोशिश छोटे छोटे पैमाने पर होता है, इंसान अपनी जात से शुरू करता है, अपने घर से शुरू करता है, अपने छोटी सी सोसाइटी और एक छोटी सी कम्युनिटी से शुरू करता है, या एक बड़े स्टेज पे पहुंचता है, एक दायरे की एक कैपेसिटी कैपेबिलिटी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें, लेकिन कोशिश और जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, बहाने नहीं करना चाहिए, कोशिश मतलब एक हकीकी कोशिश होनी चाहिए, बहाना नहीं होना चाहिए, मैंने थोड़ा कोशिश किया था नहीं हुआ छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है, ये ऐसा काम है जिस जैसे कि हदीस ने फरमाया कि गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, यानी गोद से लेकर कब्र तक जिद्दोजहद करो, इससे पीछे जो है हटना नहीं है। अब ये जो तीन मेन पिलर्स हमने डिस्कस किए, इसी को लेकर कुछ हेल्पफुल इकदाम हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो मददगार हैं, इन मददगार स्टेप्स को लेकर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद है। नंबर एक ये है कि एक मददगार जो आमिल बन सकता है, इकदाम जो हमें करने चाहिए वो ये है कि हम ये एहसास करें, यानी इमाम की जाहिरी गैर मौजूदगी का एहसास रखना, ये एहसास हमारे अंदर पैदा हो रहा है कि इमाम मौजूद नहीं है, मैं इमाम के बगैर हूँ। वही जो दुआए नदबा के अंदर हमें जुमले जुमले मिलते हैं, काश आप कहाँ पर हैं, काश कि मुझे पता चलता कि कैसे मैं आप तक पहुंच सकता हूं, फिर खुदा से शिकायत करते हैं कि खुदाया ये कब जहूर होगा, दिगर दुआओं के अंदर भी हैं। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खोकर इमाम की गैर मौजूदगी का एहसास खत्म हो जाए आस्ता आस्ता, तो ये हकीकी मुंतजिर नहीं है, ये भूल गया आस्ता आस्ता, ए याद आया एक दफा तो वो थोड़ा सा अटेंशन हो गया, उसके बाद दोबारा भूल गया, बल्कि शब और रोज ये एहसास होता रहे कि इमाम गैब हैं, और इमाम की गैबत का एहसास, इमाम की गैर मौजूदगी का एहसास करे और उसके जहूर के लिए कोशिश करता रहे। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है जिसके जो इकदाम है वो ये कि इमाम के जहूर पर यकीन रखना, ये भी एक मसला है। आस्ता आस्ता लोग जब देखते हैं दुनिया में बातिल कुव्वतों की और बातिल निज़ाम और सिस्टम्स की ज्यादा डोमिनेशन है, वो कब्जा है उनका, ज्यादा जो है कंट्रोल है, तो आस्ता आस्ता या और चीजें अवामिल आ जाते हैं, भूल जाता है, इमाम के जहूर पर उसका जो यकीन है वो मुतजलजिल होने लग जाता है, इसीलिए देखें अटेंशन भी नहीं होता, उस तरफ तवज्जो भी नहीं करता है। जिस कदर ईमान के जहूर का एहसास बढ़ेगा उस कदर ही ईमान की आमद के लिए तैयारी भी होगी। लेकिन अगर आस्ता आस्ता सुस्ती के शिकार हो जाए, जहूर और इंतजार सिर्फ एक खाली एतकाद बनकर रह जाए, तो फिर मुंतजरीन ईमान में से तो हम नहीं हो सकते, नहीं वो एक सच्चा और हकीकी इंतजार हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, इमाम हाजिर की जरूरत का एहसास। यानी एक तो है कि इमाम के जहूर पर यकीन रखना कि इमाम जाहिर करेंगे, हर हाल में जाहिर होंगे। दूसरा यह कि इमाम के हाजिर की जरूरत का एहसास, कि भाई मैं एहसास कर रहा हूं, इंसानी मुआशरे को देखता हूं कि बगैर इमाम मासूम के किस तरह का ये सिस्टम है। शिद्दत के साथ मैं एहसास कर रहा हूँ, मशरिक को देखता हूँ, मगरिब को देखता हूँ, देखता हूँ ठीक है बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिविटी है, लेकिन उसके बावजूद जो नहीं हो रहा है वो उससे 1000 गुना ज्यादा है। जो जरूरत है वो उससे 1000 गुना ज्यादा है। लिहाजा जरूरत है कि इमाम मासूम का जहूर हो, इमाम मासूम मौजूद हो, कि वो जो 1000 और लाखों गुना जो नहीं हो रहा है वो हो जाए, जो जो असल में सआदत की तरफ हमें लेके जा सकता है। हम दाएं बाएं देखते कहते हैं कि नहीं, कोई चीज आइडियल नहीं हो रही है, कोई भी चीज आइडियल नहीं है इस मीनिंग के अंदर। चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है, इमाम के जहूर को करीब समझना। यानी जो यकीन रखता है कि इमाम का जहूर नजदीक है, उसकी तैयारी भी बेहतर होती है और उसकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी भी ज्यादा बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी कोई अपॉइंटमेंट हो किसी अहम काम को लेकर और हम उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, और जू जू वो टाइम करीब आता है अपॉइंटमेंट का, हमारी तैयारी भी और अटेंशन भी ज्यादा होने लग जाती है। हम चीजों को रीचेक करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए देखें, हमें भी योमिया भी दिया है, शेड्यूल दिया है, स्केड्यूल बना के दिया है, और वीकली भी दिया है, मंथली भी दिया है, और ईयरली भी दिया है। मसलन 15 शाबान कह सकते हैं सालाना के हवाले से, माह रमजान है, माह शाबान है, दीगर अय्याम है। जुमे के दिन को अहमियत दिया गया वीकली हवाले से अगर बात करना चाहें। हमें जो है रोजाना सुबह कहा दुआएं अहद पढ़ा करें, मुख्तलिफ दुआएं दी गई हमें, हर कहा कि सुबह को दुआए नुतबा पढ़ा करें, यानी हर जुमे की सुबह या हफ्ते में किसी दिन कम से कम, नहीं तो जिंदगी में एक दिन का दुआए नुतबा जरूर पढ़ा करें। अलामात जहूर हमें बताई गई हैं कि अगर ये इंसिडेंट होता है, दैट्स मीन आप लोग इमाम के जहूर के करीब हैं। यानी हमें नहीं पता करीब है तो कितने हैं, लेकिन ये कि आप करीब होते जा रहे हैं। अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये उस उन उन साइन में से हैं, अलामतों में से हैं कि इमाम के जहूर के आप करीब हो चुके हैं, क्योंकि इमाम के जहूर के नजदीक ऐसी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ये सब क्या है, प्रिपेयर हो जाओ। ये नहीं कि न्यूज दे रहा है हमें, कुछ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, न्यूज देना नहीं है, मतलब ये है कि गेट रेडी और तवज्जो करो, ये इंसिडेंट्स हो गए। देखें मसलन कुम से एक मर्द उठेगा, उठ गया वो कुम से मर्द, इंकलाब भी बर्पा किया, ये इमाम के जहूर की अलामत में से है, क्योंकि उसने तमहीदी काम करना है, उसने ग्राउंड हमवार करना है। और मसलन सिचुएशन मिडिल ईस्ट के अंदर दाएं बाएं इधर उधर जो पोलिटिकल सूरत हाल, दूसरी सूरत हाल है, और अलामतें दी गई हैं इंसानों की जिंदगी, ये वो पसंद नापसंद किससे लेकर अलामतें बताई गई हैं, कह रहे मतलब ये क्या, ये अलर्ट है, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो यह बहुत जरूरी है कि इनकी तरफ भी हम तवज्जो करें। एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, मैं उसको रेज करना चाहूंगा, वो ये है कि इमाम का जहूर तूलानी हो जाए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंसान को मायूस करते हैं। हत्ता इस टॉपिक को लेकर कि इंसान का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, किसका कंट्रोल होगा, क्या होगा, तबाही होगी या अच्छाई होगी, कौन छा जाएगा, किसकी जो है सल्तनत होगी, वगैरह वगैरह पर बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं। बर्ट्रैंड रसेल की मशहूर किताब हैज मैन ए फ्यूचर, उसको आप देखें मायूसाना किस्म की बातें करते हैं, हालांकि बर्ट्रैंड रसेल बहुत सी उस पर अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मायूसी है उसके लिए। वो दुनिया के एटमी हथियारों को देखता है, न्यूक्लियर से लेकर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो वेपन मास डिस्ट्रक्शन टाइप के हैं या जो केमिकल हथियार, उनको देखे तो मायूसी है, बारूद के ढेर पे बैठे हैं, किसी पागल ने अगर जो है जाहिल बच्चे ने माचिस की तीली लगा दी इस बारूद के ढेर पर तो पूरी दुनिया राख बन जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह जॉन टॉमसन है जिनकी किताब है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, उसके अंदर भी आप देखें और भी बहुत सारी किताबें, तो मायूसी दिखाया है। हम नहीं मायूस, इस दुनिया इसलिए खलक नहीं हुई है कि एक बच्चा बारूद के ढेर पर माचिस की तीली जलाए शरारत करके और दुनिया तबाह हो जाए, इसलिए दुनिया खलक नहीं हुई है। हमारा रासिक अकीदा है, مایوس نہ ہونا مشکلات کی وجہ سے، اہل حق کو مشکلات میں دیکھ کر مایوس نہ ہونا، اہل حق کو گھیر لیا، اہل حق کے اوپر پابندیاں، اہل حق کے اوپر ظلم، اہل حق کے ساتھ زیادتی، اہل حق ہمیشہ کمزوری کے حال میں، نہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا. مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 201 بنتا ہے ہماری سید رضی کی کمپائل شدہ نہج البلاغہ میں، اس میں فرماتے ہیں لا تستوحشوا فی طریق الہدیٰ لقلت اہلہ، راہ حق میں جو ہے نا آپ کم تعداد کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا. کربلا میں کم تھے، 72 جو ہے مشہور ہیں، 100 کچھ ٹوٹل افراد تھے. بہرحال پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، عشق امام اور محبت امام. اس لیے ہمیں دعا مناجاتیں امام کے نام پر صدقہ دینا، امام کے بارے میں جاننا، معلومات لینا، ڈسکس کرنا، بیٹھنا، ہمیشہ بات کرنا، اس موضوع پر گفتگو کرنا، سننا، بار بار سننا، ایک پیاسے کی طرح تلاش کرنا، ایک پیاسا جیسے پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، امام سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس کرنا، جاننا، امام کے نام کا صدقہ نکالنا، دعا کرنا، ہر محفل میں ذکر امام کرنا، صرف ایک روٹین نہ بنے دعا امام زمانہ پڑھ لو، یہ کر لو، وائنڈ اپ کرنا ہے، یہ اس طرح نہ ہو جائے، اٹینشن کے ساتھ پڑھ لے آدمی. روزانہ صبح دعائے احد پڑھنے کی اہمیت کو بتایا، دعائے ندبہ کے حوالے سے بتایا، دیگر چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہم میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا اس سیشن کو. تیسرا جو حصہ ہے اس کا وہ انتظار کی فضیلت کو لے کر ہے، جس کے اندر بہت سارے اہم نکات ہیں، اس کو انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.